मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 18 नवंबर 2015 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि एकेडमी साल में दो बार 15-15 दिन की इंटरपर्सनल क्लासेस भी आयोजित करती है। जो अगली क्लासेस होनी है वो फरवरी 2016 में होनी है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन जारी है और इसी में पांच दोस्तों ने कल अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। उन पांच दोस्तों का भी मैं हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। इन नौजवान साथियों के नाम हैं दिलीप मिश्रा, जो मऊ उत्तर प्रदेश से हैं, मुकेश यादव, आप मेरठ उत्तर प्रदेश से ही हैं, सरिता फतेहपुर, आप भी उत्तर प्रदेश से हैं, प्रियंका विजय शालार, आप मुंबई से हैं और एम एस खान, आप सूरजगढ़ राजस्थान से हैं। तो दिलीप, मुकेश, सरिता, प्रियंका और एम एस खान, आप पांचों साथियों का मैं अपनी एकेडमी की पूरी टीम की तरफ से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और साथ ही आप सबको यह सलाह भी देना चाहूंगा कि प्लीज इससे पहले कि आप क्लासेस में आए, बेहतर होगा कि आप मानसिक रूप से खुद को तैयार करते रहें। खुद को एक तरह से जैसे कि पेंटिंग करने से पहले कोई पेंटर कैनवास तैयार करता है, उसी तरह से सजाते रहें, संवारते रहें, ताकि आप सब यहां से ज्यादा लेकर जा सकें। और इसके लिए जो मुझे सबसे ज्यादा जरूरी एक उपाय लगता है वो ये है कि अभी से ही सारे स्टूडेंट्स को जो फरवरी की क्लास में आने वाले हैं, चाहे उन्हें बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तीन काम उन्हें जरूर करने चाहिए। पहला तो यह है कि उन्हें डेली रेडियो की न्यूज सुननी चाहिए, स्पेशली रात में जो 9 बजे की खबर आती है। दूसरी बात यह कि उन्हें डेली कम से कम एक नेशनल न्यूज़पेपर्स जरूर पढ़ना चाहिए। और तीसरा यह कि बेहतर होगा यदि आप डेली ऑडियो गाइडेंस को भी सुनने की आदत बना लें। इससे आपको मुझे समझने में मदद होगी और मुझे भी आपको समझाने में मदद मिलेगी। और जब ये वेवलेंथ स्टैब्लिश हो जाती है मित्रों, तो फिर जो हमारा कम्युनिकेशन है वो अधिक परफेक्ट लेवल पर होने लगता है और हम अधिक से अधिक एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हो पाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक रूप से स्वागत है। मित्रों, अब है सेकेंड स्टेज, जो लाइफ मैनेजमेंट का स्टेज है। और लाइफ मैनेजमेंट के स्टेज में अभी पिछले एक दो दिनों से मैं खासकर मानसिक मजबूती और जीवन और मृत्यु, सफलताओं और असफलताओं पर अपनी बात रख रहा हूं। कल मेरे पास एक जो मेरी स्टूडेंट हैं, जो थर्ड बैच की स्टूडेंट रही हैं, वो जब यहां से लौट रही थी तो उन्होंने अपने जो अनुभव थे वो बहुत विस्तार के साथ बयां किए हैं। लगभग एक पेज का बड़ा मेल उन्होंने लिखा है। मैं खासकर उन्हीं बातों को ध्यान में रख करके इसी क्रम में जो पिछले दो दिनों से हमारा लाइफ मैनेजमेंट का सब्जेक्ट चलता आ रहा है, अपनी कुछ बातें मैं रखना चाहूंगा। मित्रों, जब मैंने आपसे ये बात शेयर की है कि किस तरीके से एक ही मंच पर 1.5-2 घंटे पहले हम किसी को श्रद्धांजलि दे रहे थे, किसी के चले जाने की सूचना दे रहे थे इस दुनिया से चले जाने की, तो 2 घंटे बाद ही हम किसी के उस दुनिया में आ जाने का जश्न भी मना रहे थे। जिंदगी में यही होता है, निरंतर होता है और ये लगातार चलता रहता है और इसीलिए अब तक यह जीवन चल भी रहा है। मित्रों, ये बात तो मैंने कही थी नो डाउट जीवन और मृत्यु के संबंध में, और बाद में थोड़ी सी इशारा मैंने किया था सफलताओं और असफलताओं के बारे में भी। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक ऐसी बात है और अपने सूक्ष्म तौर पर, बिल्कुल कह लीजिए कि आप माइक्रो लेवल पर, इतने विस्तार के साथ फैली हुई है, इसे आप किसी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अपने एक दिन की पूरी क्रियाकलापों को उठा लीजिए, आप एक दिन की अपनी घटनाओं को उठाइए और उसका जायजा लीजिए, तो आप देखेंगे कि उस एक दिन में ही कुछ क्षण आपके पास बड़े खुशी के आए थे और कुछ क्षण आपके पास दुख के भी आए। कुछ क्षण ऐसे आए जब आप दूसरों के ऊपर गुस्सा हुए, दूसरों ने आपको क्रोध दिलाया, और कुछ क्षण ऐसे भी आए कि उनके ऊपर आपकी करुणा जागी या फिर आपका प्यार जागृत हुआ और आपने अपने करुणा और प्यार को उनके ऊपर लुटाया भी। कुछ समय ऐसा आया या कुछ लोग आपको ऐसे मिले जिन्होंने आपको धोखा दिया, आपको निराश किया, लेकिन उसी दिन कुछ लोग ऐसे भी मिले होंगे जिन्होंने आपकी मदद की और आपके अंदर एक नया उत्साह भरा, एक नई आशा पैदा की, और यह सब एक ही दिन के अंदर हुआ। इसका मतलब यह है कि यह प्रकृति इतनी अद्भुत है, इतनी विचित्र है और इतनी शक्तिशाली है, और सच पूछिए तो हमारा इतना अधिक ध्यान रखने वाली होती है कि यदि वो एक हाथ से हमसे कुछ छीनती भी है तो दूसरी हाथ से हमें कुछ देती भी है। बल्कि मुझे तो यह लगता है कि जो उसका छीनने वाला हाथ है वो कमजोर है, छोटा भी है, लेकिन जो देने वाला हाथ है वो उसका बहुत मजबूत है और शायद बहुत विशाल है और बहुत बड़ा भी है। और मित्रों, इसी लेने और देने के क्रम में हमेशा प्रकृति हमारे जीवन में एक संतुलन बनाए रखती है। हमारे साथ होता क्या है? हमारे साथ होता यह है कि जो इसका जो निगेटिव पक्ष है, जिन्होंने हमें धोखा दिया, जिन्होंने हमें गुस्सा दिलाया, जो हमारे दुख के पल थे, वो हमारे जीवन पर कुछ इस तरीके से छा जाते हैं कि हमें लगता है कि यही तो सब कुछ है हमारे जीवन में, बाकी तो कुछ है ही नहीं। जैसे दोस्तों, अब तो आप लोग को उसके साथ आप लोग का अनुभव नहीं होगा, लेकिन हम लोगों के समय में होता क्या था कि हम लोग जिस पेन से लिखा करते थे वो स्याही से चलती थी, उस स्याही उसमें भरना पड़ता था। आप लोगों ने भी ऐसे पेन देखे होंगे, तो कभी वो स्याही बहुत ज्यादा लीक करने लगती थी फाउंटेन पेन की नीब से, तो वो स्याही एक तरीके से फैल जाती थी उस कागज पर जिस पर लिख रहे होते थे। फिर एक अलग से पेपर आता था, कलर्ड पेपर होता था, जिसको हम लोग सोखता कहते थे। सोखता का मतलब है वो उसको सोख लेता है, जो स्याही कागज पर फैल गई है वो उसको सोख लेता है, वो उसको सुखा देता है। तो हम लोग जब वो सोखते का टुकड़ा उस फैली हुई स्याही पर रखते थे तो उसमें शुरुआत में तो उस सोखते पर बहुत छोटा सा बिंदु बनता था, और बाद में वो बिंदु उस कागज पर, उस सोखता पर बिल्कुल फैलता चला जाता था, और कागज पर पड़ी हुई स्याही सूख जाती थी और यह सोखता गीला हो जाता था। मुझे लगता है मित्रों कि हमारे जिंदगी में भी हम सब शायद अपनी जिंदगियों में भी हम यही करते हैं। छोटी सी कोई निगेटिव घटना होती है, छोटा सा कोई दुख का पल आता है, तो हम उसे इस बुरी कदर सोख लेते हैं, या हमारा जो दिमाग है, हमारी जो चेतना है, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो मन है, जो कुछ भी आप कह लीजिए दिमाग है, उसको इस बुरी कदर से सोखता है कि उस सोखने के बाद उसको अपनी पूरी चेतना में फैला देता है और लगता है कि नहीं, यही सब कुछ है हमारी जिंदगी में, तो यही सब कुछ हो रहा है, दूसरा तो कुछ बेहतर है ही नहीं। मित्रों, ऐसा नहीं होता है। देखिए, मैं तो ये बहुत ही सिंपल सी बात को मान करके चलता हूं। मित्रों, हमारी जिंदगी को खत्म करने के लिए मात्र एक नेगेटिव इंसिडेंस इज सफिशिएंट। एक विरोधी घटना, एक नकारात्मक घटना हमारे पूरे जीवन को खत्म कर सकती है। आप सब का अनुभव भी रहा होगा, कितनी बार हमारा एक्सीडेंट होते होते बचा है, पैर फिसलते फिसलते रह गया है, पता नहीं क्या क्या नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम अभी तक बचे हुए हैं और अभी तक जीवित हैं, और लेकिन क्या अभी तक हम हैं ही, तो आप समझ करके देखिए, आप मतलब सोच करके देखिए कि वो एक निगेटिव घटना जो हमारी जिंदगी को खत्म कर सकती थी अभी तक घटी नहीं है। घटने की संभावनाएं कितनी बार बनी, लेकिन उसी दौरान कुछ ना कुछ ऐसी पॉजिटिव चीजें हुई हमारी जिंदगियों में कि वो निगेटिविटी खत्म हो गई और हम बचे हुए हैं। सकारात्मकता की शक्ति ने हमें बचा लिया है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि हर के साथ होता है और हमेशा ही होता है, निगेटिव घटनाएं भी घटती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि हम अपने जीवन को ही उन निगेटिव घटनाओं का बिल्कुल स्लैब बना दें, उनका गुलाम बना दें। हमारा ध्यान इधर होना चाहिए कि ज्यादातर समय में हमारे साथ पॉजिटिव घटनाएं ही घटती हैं, निगेटिव तो कभी कभी घट जाती है। तो मित्रों, उस कभी कभी घटने वाली घटना को क्या हमें अपने जीवन के हर समय घटने वाली घटना बना देना चाहिए? क्या जीवन में हम इसी के ही गुलाम बने रहें, हमेशा इसी डर से, इसी भयभीत मानसिकता के साथ हम जीते रहें कि पता नहीं वो बुरी घटना हमारे साथ कब घट जाए, और हम सारी घटनाओं को जो बेहतर भी हो सकती हैं और होती ही हैं उनको बुरी घटनाओं में कन्वर्ट कर दें? अभी हमारे ऊपर है। जो सांख्यिकी है, जो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है, उससे भी हमें सीख यही मिलती है कि जिसकी ज्यादा संभावना है वो जीवन है, जिसकी कभी कभी संभावना होती है वो जीवन नहीं होता है। भूकंप आते हैं, तूफान आते हैं, छतें गिर जाती हैं, करंट लग जाता है, पता नहीं कितनी दुर्घटनाएं होती हैं जो कभी कभी होती हैं। हम बस में सफर करते हैं, बाइक चलाते हैं, एयरप्लेन क्रैश हो जाते हैं, ट्रेन एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोगों की मृत्यु भी होती है, बाढ़ आती है, क्या क्या दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। लेकिन हम उसे तो जीवन नहीं मानते, हम उसके इतने बुरी तरह से गुलाम नहीं हो जाते, उससे इतने भयभीत नहीं हो जाते कि हम जीना ही भूल जाएं, मुस्कुराना ही भूल जाएं, ऐसा हम नहीं करते हैं। और ये एक बहुत अच्छी बात है दोस्तों। खासकर मैं जो मान करके चलता हूं कि ऐसे लोग जो पब्लिक लाइफ में एंटर कर रहे हैं, वो चाहे किसी रूप में पब्लिक लाइफ में आए, चाहे वो राजनीति के माध्यम से पब्लिक लाइफ में आ रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विसेज के माध्यम से पब्लिक लाइफ में आ रहे हैं, या वो समाज सेवा के माध्यम से पब्लिक लाइफ में आ रहे हैं, कोई भी माध्यम हो, मतलब आप एक पब्लिक फिगर बनना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि वो इस तरह की सकारात्मकता को विशेष रूप से अपने ऊपर हावी होने दें। मैं जानबूझ करके कह रहा हूं कि सकारात्मकता को हावी होने दें। उनको लगना चाहिए कि नहीं नहीं, समथिंग विल टर्न अप, कुछ ना कुछ बेहतर ही होगा, क्योंकि जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि कुछ ना कुछ बेहतर ही होगा, तब तक हम कुछ आगे अच्छा बेहतर करने के बारे में विचार ही नहीं कर सकते। अगर हम यही मानेंगे कि सब कुछ गड़बड़ ही होने वाला है, तो स्वाभाविक है कि हमारे कदम ही आगे नहीं बढ़ेंगे कुछ करने के लिए, क्योंकि हम मान करके चल रहे हैं कि करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। और मित्रों, जब हम पब्लिक लाइफ में जाते हैं तो उसकी एक बहुत बड़ी शर्त होती है कि किस तरीके से हम अपनी सेंसिटिविटी को कम करें। सेंसिटिविटी को कम करने का मेरा मतलब यह नहीं है कि हम समाज के लोगों के प्रति, जिनके लिए हम काम करना चाह रहे हैं, हमारी संवेदनशीलता भोथरी हो जाए, कम हो जाए, मेरा मतलब यह नहीं है। मेरा मतलब यह है कि अगर किसी की बात से हमें कोई चोट पहुंचती है, किसी के एक्शन से, किसी के काम से हमें दुख होता है, तो हमें ठीक उसे उसी तरह से भुला देना चाहिए जैसे कि सूरज के निकलते ही वो उसकी सारी बूंदें गायब हो जाती हैं, वो था अब नहीं है। लेकिन अगर वो अभी भी हमारे दिमाग में बना रहेगा तो डेफिनेटली फिर पॉजिटिविटी, जिसके मैं हावी होने की बात कर रहा हूं, वो स्थितियां नहीं आएंगी। और लगातार वो जो निगेटिविटी है उसी सोखते पर टपके हुए एक बूंद की तरफ लगातार फैलती चली जाएगी। मित्रों, ये मानसिक ताकत होती है, इसीलिए मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स से और अपने सुनने वाले प्रिय श्रोताओं से ये अपील करता हूं, ये अर्ज करता हूं, सलाह देता हूं, राय देता हूं कि अपने दिमाग को कभी भी भावनाओं के काबू में आने न दें, हमेशा तर्क को लेकर के चलें। हां, तर्क की मदद भावना आपका कर सकता है, लेकिन भावनाओं के बाढ़ में तर्क को तिनके की तरह बहने की गुंजाइश न छोड़ें। तो मित्रों, वही जो मैं इससे पहले जीवन और मृत्यु की बात कर रहा था कि थोड़े समय पहले मृत्यु थी और इसके बाद जीवन है, ठीक इसी तरह से थोड़े समय पहले ही हमारे जीवन में कुछ मृत्यु जैसा ही आभास होता है, लेकिन उसके थोड़े समय के बाद ही हमारे जीवन में एक उत्साह, एक उल्लास का बिल्कुल लहलहाता हुआ प्रकाश स्तंभ खड़ा हो जाता है। हमें इसे ही जीवन मान करके चलना चाहिए। और मृत्यु दोस्तों, जैसा हम अनुभव करते हैं, सच पूछिए तो वही हमारा जीवन है। वो नहीं है जो हम दुनिया भर का ताम झाम देख कर और अपने मन को सुकून दिलाते हैं, बल्कि वो है जो हमारे मन को अनुभव होता है, वही हमारे जीवन की परिभाषा बनती है। फ्रेंड्स, लाइफ मैनेजमेंट के इस हिस्से के बाद अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर। कल के AIR न्यूज में हम देखते हैं कि कुछ विशेष बात करने लायक हमारे पास नहीं है, खासकर चूंकि हम सिविल सर्विस को लेकर के चलते हैं, उसी लिहाज से मैं ये बात कह रहा हूं। एक दो बातें जरूर हैं मित्रों। तमिलनाडु वाली जो खबर थी, आपने देखी कि वो पहली खबर थी, कई दिनों से तमिलनाडु मानसून की बारिश से बहुत परेशान है, और आपने देखा कि शुरुआत में उसमें साउथ वेस्ट मानसून आया था, इसके बाद अब उसमें साउथ ईस्ट मानसून से परेशान था, अब वो साउथ नॉर्थ ईस्ट मानसून से परेशान है। मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था कि प्लीज आप लोग, चाहे वो एनसीईआरटी की किताब हो या ज्योग्राफी की किताब हो, उसमें एक बार बहुत अच्छे से समझ लें कि ये साउथ वेस्ट मानसून क्या होता है, जब शुरुआत होती है भारत में एक तरह से जून के महीने में, और इसके बाद फिर ये साउथ वेस्ट मानसून क्या होता है, ये कहां से साउथ वेस्ट बनता है और कैसे फिर मानसून लौटता है और तमिलनाडु के क्षेत्र तटीय क्षेत्रों में बहुत भारी बारिश करता है, और इसके बाद फिर जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो कहां से जनरेट होता है और कैसे वो साइबेरिया और चाइना से होता हुआ भारत में प्रवेश करता है और फिर तमिलनाडु तक पहुंच करके बारिश करता है। सिद्धांत बहुत आसान है, जो मैंने यहां क्लासेस में दोस्तों आप लोगों को समझाया था। सिद्धांत यहां केवल दबाव का सिद्धांत काम करता है, और दबाव के सिद्धांत को आप इस पर अप्लाई करेंगे तो आप तुरंत इन सारी सिचुएशंस को समझ लेंगे। लेकिन मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि प्लीज जब भी आप इसके बारे में पढ़ाई करें तो नक्शा जरूर देखें, मैप जरूर देखिए कि ये जो मानसून है ये वर्ल्ड मैप में, या इंडिया का मैप ले लीजिए, खासकर एशिया और यूरोप का मैप आपके लिए सफिशियंट होगा खासकर इसको समझने के लिए, और देखिए कि वो किस पॉइंट से ये मानसून जनरेट हो रहे हैं और कैसे फिर ऊपर उठ करके और किस रूट से ट्रेवल करते हुए इंडिया में एंटर करते हैं, और इंडिया में एंटर करने के बाद कैसे कैसे उनका मूवमेंट होता है और तमिलनाडु तक पहुंचते हैं। एक बार आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी जद्दोजहद मैं कहना चाहूं मेहनत की जगह वो करनी पड़ेगी इसको समझने के लिए, लेकिन एक बार अगर आप समझ लेंगे तो इस पर आपकी बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी, और मुझे लगता है कि ये कमांड आपको अगर सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना है तो हासिल भी करनी चाहिए। मित्रों, जो दूसरी जो खबर है वो कई खबरों का मिला जुला रूप है, जिसमें कह लीजिए जिसमें भारत की आंतरिक सुरक्षा का भी प्रश्न जुड़ा हुआ है। जैसा कि हमारे राजनाथ सिंह जी जो गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही है, खासकर हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर के और आईएसआईएस को भी लेकर के बात की है। फिर हम देखते हैं कि फिर एक खबर फ्रांस की भी थी, जहां पर अभी आईएसआईएस का अटैक हुआ, इतना बड़ा हमला हुआ है। तो इन खबरों को मिला जुला करके और अखबारों में भी जो बातें इन पर आई हैं, मुझे लगता है कि उस पर कुछ चीजें आप लोगों के नॉलेज में लाना वो ज्यादा उपयोगी होगा। मित्रों, एक बात मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूंगा, और वो ये कि इस ऑडियो गाइडेंस में मैं जो भी बातें आपसे शेयर करता हूं, जो डिस्कस करता हूं, उसका जो टारगेट होता है वो केवल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है। मतलब बहुत सी चीजें मेरे बातचीत में छूटती भी होंगी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं उन सारी चीजों को लेकर के चलता हूं। मैं सारी चीजों को समेटने में विश्वास ही नहीं करता, क्योंकि चीजें इतनी सारी हैं कि अगर हम उन सारी बातों को समेट कर चलेंगे तो सही मायने में जो बातें हमारे पास, इंपॉर्टेंट बातें हमारे पास रहनी चाहिए, वो हमसे छूट जाएंगी। इसलिए आपको कभी अगर ऐसा महसूस होता है कि मुझसे कुछ बातें छूटी हैं तो मान करके चलिए कि जानबूझ करके छोड़ी गई होंगी, लेकिन ऐसा भी हर समय नहीं होता है, कभी कभी बातें वास्तव में छूट भी जाती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बात छूट गई है तो आप अपनी तरफ से उसे ऐड कर सकते हैं, अगर आप उसे इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं तो। मतलब इतनी पूरी फ्रीडम आपको है, मैं तो केवल आपके दिमाग में एक धुंधली सी तस्वीर उस घटना के बारे में बनाने की कोशिश करता हूं, डेफिनेटली उसमें रंग भरना और उसको और गाढ़ा और चटकदार बनाना ये आपकी अपनी मेहनत होगी, और इसीलिए मेरा ये जो ऑडियो गाइडेंस है वो अंतिम शब्द भी नहीं है, और सच पूछिए तो वह अंतिम किताब भी नहीं है कि इसके बाद आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, इसी खासकर पॉलिसी के तहत मैं अब आपसे भारत की आंतरिक सुरक्षा और फ्रांस और रशिया में जो भी चल रहा है उसको लेकर के कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। पिछले दो दिनों में हम लोगों ने काफी कुछ सीरिया और इराक के बारे में बातें की है, सीरिया के बारे में तो काफी बातें हुई हैं, फ्रांस के बारे में भी हम लोगों ने काफी बातें की थी कि फ्रांस की जो पॉपुलेशन है लगभग 6.5 करोड़ की है और वहां 10% मुस्लिम लोग हैं। धीरे धीरे यूरोप में इधर शरणार्थियों का दबाव भी बढ़ रहा है और कुछ ऐसी स्थिति बन रही है कि आर्थिक मंदी का भी दौर चल रहा है तो बेरोजगार की स्थिति पैदा हो रही है, और कैसे उस बेरोजगारी का फायदा उठाते हुए जो आईएसआईएस जैसे संगठन हैं वो खासकर युवाओं को स्पेशली एक तरह से बहकाने का काम कर रहे हैं। और हम लोगों ने बात की थी कि अगर इस विश्व आतंकवाद से अगर हमें लड़ना है या आतंकवाद से लड़ना है तो एक बौद्धिक स्तर पर भी उसकी लड़ाई होनी चाहिए। यहां तक हम लोगों ने बात की थी। आज के एडिटोरियल कमेंट्स में और कुछ बहुत अच्छे आर्टिकल्स में कुछ नई बातें और इसी क्रम में मिली हैं, मैं उन नई बातों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। मित्रों, आपको मालूम है कि नवंबर लास्ट से लेकर के दिसंबर के फर्स्ट वीक तक या कुछ दिनों तक पेरिस में एक जलवायु सम्मेलन हो रहा है। 13 दिसंबर तक जलवायु सम्मेलन होने जा रहा है। डेट आप देख लीजिएगा। उस जलवायु सम्मेलन के बारे में आपने देखा कि कुछ आर्टिकल्स आने शुरू हो गए हैं, क्या क्या संभावना है, क्या क्या होना चाहिए, किन किन इश्यूज पर डिस्कस किए जाने चाहिए, किस किस तरह के अवरोध आएंगे, वो आने चाहिए। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी खासकर पूरी की पूरी दुनिया में जो तीन सबसे बड़ी समस्याएं चल रही हैं जिसको लेकर के विश्व के नेता चिंतित हैं, एक है विश्व आतंकवाद, जिसके बारे में अभी G20 में काफी बातें हुई, दूसरा है जलवायु क्लाइमेट चेंजेस, इसको लेकर के अभी पेरिस में काफी बातें होनी है, और तीसरा है गरीबी। वर्ल्ड में जो एक पावर्टी की जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, जो भयावह स्थितियां बन रही हैं, लग रहा था कि शायद विश्व उदारीकरण के बाद शायद विश्व की गरीबी कम होगी, लेकिन ऐसा देखने में आ नहीं रहा है। थोड़ा सा ग्रुप अगर उससे उसको फायदा हो रहा है तो, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जिसको उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो ये तीन सबसे बड़ी समस्याएं हैं। तो जो पावर्टी वाली समस्या होती है वो डिफरेंट डिफरेंट फोरम पर उसके बारे में बातचीत होती ही है। जैसे अभी ब्रिक्स के लीडर्स आपस में मिलकर के उन्होंने इसी के बारे में प्रश्न उठाया, और यहां तक कि G20 सम्मेलन में भी इसको लेकर बात हुई। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट इशू हैं, और सच पूछे तो ये तीनों इशू दिखते अलग अलग हैं लेकिन काफी कुछ एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। इसी से रिलेटेड एक बहुत अच्छा आर्टिकल जनसत्ता कल के 17 तारीख के जनसत्ता में छपा है, जो मैं आप लोगों को अपने नॉलेज सेंटर में प्रोवाइड भी कर रहा हूं। इसमें देखिए, इन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से जो जलवायु का जो संकट है, जो क्लाइमेट का जो संकट आ रहा है, उसके कारण गृह युद्ध की स्थिति बन रही है। सीरिया में जो अभी संकट दिखाई दे रहा है, जहां से शुरुआत हुई है, और खासकर काफी लंबे समय से सीरिया इस गृह युद्ध से जूझ रहा है, जो आज जूझते जूझते हालत यह हो गई है कि वो आईएस का कब्जा उस पर हो गया है, जिसके बारे में हम लोगों ने कल डिटेल में बात की थी। इस आर्टिकल में ये दिया हुआ है कि खासकर अभी एक तो शरणार्थियों की समस्या बहुत जबरदस्त पैदा हो रही, जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इतनी बड़ी समस्या कभी पैदा नहीं हुई। उसमें दिया कि 2006 से 2010 के बीच में सीरिया में भयंकर सूखा पड़ा, और इस सूखे के लिए सच पूछे तो जलवायु परिवर्तन जो है वो जिम्मेदार है, और इससे देश के लगभग 60% हिस्सा, 60% हिस्सा रेगिस्तान में तब्दील हो गया है। फसलें बर्बाद हो गई हैं, जानवर मर गए हैं, लाखों किसान भुखमरी के शिकार हो गए हैं। अब क्या होगा, मजबूर होकर के सीरिया के लोगों को रोजी रोटी की तलाश में कहीं बाहर जाना पड़ा, और ये शरणार्थी में कन्वर्ट हो गए। जब देश की यह स्थिति बनी तो सीरिया अपने आप ही एक तरीके से गृह युद्ध का शिकार हो गया, और इस गृह युद्ध में दोस्तों आपको सुनकर के शायद आप हिल जाएंगे कि अब तक 2 लाख से लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, और 40 लाख लोग शरणार्थियों के रूप में दूसरे देशों में मूव करने के लिए मजबूर हुए हैं। और ये जो संकट आया है वो सिर्फ क्लाइमेट चेंज के लिए आया है। तो क्या आपको नहीं लगता कि किस तरह से जो जलवायु परिवर्तन है या जलवायु का जो संकट है, एक प्रकार से राजनीति का संकट बन गया है। मित्रों, इसी में एक और भी घटना में एक और जगह का उदाहरण दिया हुआ है कि सहारा का जो दक्षिण छोर है वो भयंकर रूप से वहां अकाल पड़ने लगा है, और उसका नतीजा यह हो रहा है कि वहां के लोग पलायन कर रहे हैं, और उसके आसपास के जितने भी एरिया हैं वहां एक सशस्त्र हिंसा की स्थिति बन रही है। वहां की सरकारें फिर से इन सब को लेकर के परेशान हो रही है। तो इस तरीके से अब सीरिया के बारे में आपको एक जो नया पॉइंट यहां जो मैं बता रहा हूं, हो सकता है आपको मालूम भी हो, वो जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है कि किस तरह से वहां भयंकर सूखा आया, और सूखा आने के कारण इतनी बड़ी प्रॉब्लम वहां हुई। ये फैल सकता है, दूसरे देशों में भी फैल सकता है, ये आशंका व्यक्त की गई है। दोस्तों, इसके बाद एक और एडिटोरियल आर्टिकल इकोनॉमिक टाइम्स का, और खासकर वो मुस्लिम के मॉडर्निटी के बारे में है। जैसे खासकर हम लोगों ने कल भी इस पर बात की थी कि अगर हमें विश्व आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो दो तीन मुद्दे उसके बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो है कि इस लड़ाई को सैन्य दम पर ही नहीं लड़ा जा सकता, केवल सैनिक पावर के आधार पर ही नहीं लड़ा जा सकता, बल्कि इसके लिए एक बौद्धिक लड़ाई भी होनी चाहिए। यानी कि जो युवा जिनको बरगलाया जा रहा है खासकर इस्लाम के नाम पर, उनको भी सही बातें बताई जाएं, तो एक बौद्धिक लड़ाई भी होनी चाहिए। दूसरा ये बताया था कि सैन्य शक्ति, और तीसरा था कि सबको मिलकर के अब करना होगा। ये नहीं कि कुछ लोग तो आईएसआईएस को सपोर्ट करें और कुछ लोग सब फिर आईएसआईएस का विरोध भी करें। जैसे आज के अखबारों में ही आपने पढ़ा होगा कि रूस के राष्ट्रपति ने यह कहा है कि लगभग 40 देश ऐसे हैं जो आईएसआईएस को सपोर्ट कर रहे हैं, सोच करके देखो, उन्हें फंडिंग कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी विचित्र सी स्थिति हो जाती है, और फिर बट नेचुरल कि फिर ऐसे गुटों का हौसला बढ़ेगा, न तो उनके पास पैसों की कमी होगी और न सच पूछे तो इस तरह के सपोर्ट की कमी होगी, तो फिर वो लगातार फैलते चले जाएंगे। तो मिलकर मुकाबला करना होगा। जहां तक बौद्धिक लड़ाई का सवाल है, ये जो आर्टिकल मैं आपको नॉलेज सेंटर पर प्रोवाइड कर रहा हूं, इसमें इन्होंने बताया है कि मुस्लिम समुदाय में एक बहुत बड़ा समुदाय ऐसा है जो प्रोग्रेसिव विचारों का है, जो आधुनिक विचारों का है, जो चीजों को वास्तविक रूप में समझता है, और उसमें सबसे बड़ी संख्या भारत में है। भारत में इस मायने में है कि इस आर्टिकल में दिया कि भारत के जो मुस्लिम्स हैं वो बहुत ही प्रोग्रेसिव विचारों के, कंपैरेटिवली बहुत प्रोग्रेसिव विचारों के हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि वो इसका उनकी जो आवाज है एक तरह से नक्कार खाने में तूती की आवाज बन करके रह जाती है। बल्कि एक और भी आर्टिकल मैं आज आपको प्रोवाइड कर रहा हूं जो प्रकाश सिंह जी का है, जो भारत के मतलब आईपीएस अफसर भी रहे हैं, पूर्व महानिदेशक रहे हैं सीमा सुरक्षा बल के। उन्होंने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही है, और उन्होंने कहा है कि भारत में जो मदरसे हैं वहां सरकार को ये इंश्योर करना चाहिए कि आधुनिक शिक्षा दी जाए। आधुनिक शिक्षा देने से होगा ये कि उनके जो कोमल दिमाग को कट्टरपंथ अगर कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो वो उसको न कर सके, या कह लीजिए कि आगे चल करके उनको कुछ बरगलाना चाहते हैं तो उनको ऐसा वो करने की स्थिति में न हो। और इसी में उन्होंने लिखा है कि मतलब भारत में ऐसे हैं जो लगभग आईएसआईएस के बहुत से संगठन, मतलब भारत के बहुत से मुस्लिम संगठनों ने आईएसआईएस की कार्रवाइयों का जबरदस्त विरोध किया है कि वो किस तरीके से लोगों की हत्या कर रहे हैं। तो ये भारत के मुस्लिमों ने ये एक तरह से एकता दिखाई है आईएसआईएस के खिलाफ खड़े होने की। तो इसमें इन्होंने मॉडर्निटी में बात कही है कि अगर मुस्लिम समुदाय में एक प्रगतिशीलता के तत्व लाए जा सके तो यह एक तरह से आईएसआईएस के खिलाफ लड़ने में बहुत मददगार हो सकती है। मित्रों, फिर एक जो आर्टिकल है दैनिक भास्कर का, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, प्रकाश सिंह जी का लिखा हुआ आर्टिकल है, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है और मैं चाहूंगा कि आर्टिकल आप लोग अपने पास रखें। इसमें उन्होंने, चूंकि सीमा सुरक्षा बल के मतलब फॉर्मर डायरेक्टर जनरल रहे हैं, तो इन्होंने बहुत ही व्यावहारिक बातें लिखी हैं। चूंकि ये हिंदी में है इसलिए मैं बहुत विस्तार में इसमें नहीं जाना चाहता हूं। इसमें इन्होंने आंतरिक सुरक्षा की भी बात कही है और बाह्य सुरक्षा की भी बात कही है। जब आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं तो फिर वो बताते हैं कि किस तरह से अर्धसैनिक बलों की संख्या बढ़ाई गई है, लेकिन उनके जो वेपन्स हैं वो मॉडर्नाइज नहीं है। वो ये भी बताते हैं कि बीच में हमने क्या क्या नया काम किया है, जैसे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की जो यूनिट्स थी वो दिल्ली के अलावा अब दूसरे शहरों में भी, बड़े बड़े शहरों में भी बना दी गई हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, जिनकी चर्चा आप अखबारों में बार बार सुन पढ़ते होंगे और न्यूज में भी सुनते होंगे, वो स्थापित हो गई है। तटीय सुरक्षा के लिए योजनाएं बना रही हैं, जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं वहां के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत अच्छे सजेशंस दिए हैं, और मुझे लगता है कि चूंकि हर साल सिविल सर्विस परीक्षा के मेंस एग्जामिनेशन में दो या तीन क्वेश्चंस इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी पर होते ही हैं, तो इस आर्टिकल में आपको कुछ अच्छे कंटेंट मिल जाएंगे जिनके दम पर आप अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से कह सकेंगे। इसमें एक बात जो मैं आपको इस विशेष रूप से बताना चाहूंगा, जो आपके नॉलेज में होना चाहिए और आपको याद भी कर लेना चाहिए, कि अमेरिका ने आतंकवाद पर 2014 में एक रिपोर्ट जारी की थी, और उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि भारत में मुस्लिमों की आबादी इतनी ज्यादा है कि इस्लामिक स्टेट को अगर इनमें से कुछ भी प्रतिशत का समर्थन मिल गया तो उसको बहुत बड़ी संख्या में अनुयायी मिल जाएंगे। विश्लेषकों ने यहां तक कहा कि ऐसे समर्थक, मतलब आईएसआईएस के अनुयायी के रूप में समर्थन करने वाले जो लोग होंगे न केवल भारत के बड़े शहरों में बल्कि छोटे शहरों में भी हैं। और ये जो विदेशी जो इस तरह के आतंकवादी संगठन हैं उनको फिर भारत अपने लिए बड़ी उपजाऊ जगह दिखाई देने लगती है कि भारत से बहुत ज्यादा से ज्यादा संख्या में ऐसे लड़के भर्ती किए जा सकते हैं। अभी तक आपने पिछले खबरों में कुछ काफी कुछ पढ़ा होगा कि कहीं कहीं थोड़े से लड़के इस तरह के लोग पकड़े भी जा रहे हैं जो आईएसआईएस से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, 18-20 के करीब की संख्या अभी तक आई है, लेकिन फिर भी इनके फैलने में टाइम नहीं लगता है। तो ये एक जो रिपोर्ट है 2014 की अमेरिका की, ये आपके ध्यान में होना चाहिए ताकि जब भी आंतरिक सुरक्षा की बात हो या बाह्य सुरक्षा की बात हो या कुछ सजेशन देने की बात हो तो आप इस रिपोर्ट को कोट कर सके। तो मित्रों, न्यूज के बारे में इतना ही, और न्यूज़पेपर के बारे में मैं ऑलरेडी चर्चा कर ही रहा हूं। एक बहुत अच्छी क्लिपिंग है बिजनेस स्टैंडर्ड की, यह हिंदी में है मित्रों। खासकर जो सोशल कॉरपोरेट रिस्पांसिबिलिटी होती है, जिसको हम कह लीजिए कि सामाजिक दायित्व कहते हैं, जो कॉरपोरेट घराने निगम जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके जो सामाजिक दायित्व होते हैं, 2013 में एक कानून बना था, कंपनी कानून आया था। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई थी कि जो एक पर्टिकुलर प्रॉफिट के बाद की जो कंपनियां अपने प्रॉफिट का 2% सोशल कॉरपोरेट रिस्पांसिबिलिटी पर खर्च करें, उसको लेकर के एक बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही अच्छा ये आर्टिकल है जिसमें उन्होंने बताया है कि खासकर इस इश्यू पर इन्होंने बात की है कि सोशल कॉरपोरेट रिस्पांसिबिलिटी के तहत ये बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं लेकिन इनका काम अलग से दिखाई नहीं दे रहा है, जो एक थोड़ी सी चिंतनीय बात है। तो उनका काम दिखाई दे इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या नियम बनाए जाने चाहिए, इसी को लेकर के इन्होंने अपनी बातें कही हैं। पॉइंट वाइज इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातें रखी हैं, मैंने अंडरलाइन कर दिया है, आप इसे देख सकते हैं और देखने के बाद आपकी समझ में आ जाएगी बात। और लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। मित्रों, इसके अतिरिक्त मैं और दूसरे बहुत से क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, उनकी डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, आप जैसे ही नॉलेज सेंटर में जाएंगे आपको ये क्लिपिंग्स पढ़ने को मिल जाएंगी। मित्रों, अब वक्त हो चुका है, अब मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा अपने उन सभी प्रिय श्रोताओं को जिन्होंने मेल लिखे हैं, अपने विचारों से एकेडमी को अवगत कराया है, और इन्हीं में से कुछ के मैं नाम ले रहा हूं। वो उनके जो हैं, रमेश मीना जयपुर से, सुनील कुमार कुशवाहा हजारीबाग से, भंवर सिंह जोधपुर से, पंकज यादव इंदौर से, कृपेश पटेल प्रवेश हैं सिरसा हरियाणा से, और रुखसार हैं दिल्ली से। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, इसी के साथ ही आज का ये डेली ऑडियो गाइडेंस यहीं समाप्त होता है। कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।